अब थोड़ी सी छोटी छोटी बातें नोट कीजिए, क्योंकि बनी इसराइल का लफ्ज आ रहा है तो फिर बेहतर है कि थोड़ा सा मैं बोल दूं आपको, ज्यादा नहीं बोलूंगी लेकिन चंद चीजें जो अभी यहां आपको फायदा देंगी। पहली बात है कि अब आयत नंबर 40 हम शुरू कर रहे हैं, यहां से लेके आयत नंबर 123 तक राह रास्त बनी इसराइल से खिताब है। तीन दफा आप जुमला सुनेंगे, या बनी इसराइल। अच्छा, पिछले सबक में क्या पढ़ा था? या आदम। यहाँ जुमला नोट कीजिएगा, या आदम कहते कहते यहाँ अल्लाह ताला ने या बनी इसराइल कहा है, यानी ये इज्जत है, ये शर्फ है। ब्राह रास्त नबियों की औलाद थी, अल्लाह ताला ने बनी आदम कहने की बजाय बनी इसराइल कहा, यानी तुम एक कौम हो लेकिन अपने बाप आदम के रास्ते से हट गए हो। बनी इसराइल कौन थे? थोड़ा सा इस लफ्ज को पहले खोल के देख लेते हैं। बनी का लफ्ज बेन, बेटा। इसराइल का लफ्ज बहुत दिलचस्प है आपके मेरे लिए, हम इस लफ्ज को देख सकते हैं। बनी कहते हैं बेटे को। इसराइल जो है ना, ये हीब्रो का लफ्ज है। हीब्रो क्या थी? इब्रानी, यानी जैसे हम अरबी में कुरान पढ़ रहे हैं ना, तो यहूद इब्रानी जुबान में इंजील या तौरात जो भी थी उनकी, उसको पढ़ते थे। इसरा का लफ्जी तर्जमा होता है कैदी। कैदी कौन होता है? गुलाम। तो गुलाम और कैदी को मिला लें तो इसरा से मतलब वो बनता है जो अरबी में अब्दुल्ला का है। फिर दोहराती हूँ, अब्द किसको कहते हैं? गुलाम को। तो जैसे अब्द है ना गुलाम, तो हीब्रो में इसरा और अरबी में उसकी मिलती जुलती शक्ल असीर, वो सारा उसकी जमा आती है। ईल कहते हैं अल्लाह को, तो इसराइल का मानी क्या है? अगर बहुत ही ठेठ तर्जमा करूँ ना, अल्लाह का कैदी। तो अल्लाह का कैदी कौन हो गया? अल्लाह का बंदा। तो इसराइल अल्लाह का बंदा। अच्छा, इसी से फिर जिब्राइल, मीकाइल, ठीक है। ईल अमूमन फरिश्तों के साथ आता है, लेकिन यहां जो है ना, ये हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का लकब था। आप कह सकते हैं कि लफ्ज अब्दुल्ला का हीब्रो ट्रांसलेशन इसराइल है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का टाइटल कह लीजिए इसराइल था, इसी नाते से फिर इनको इसराइल कहा गया। हजरत इब्राहिम के दो बेटे, ऐसे लिखे ना इब्राहिम, फिर ऐसे दो लाइनें लगा लें, एक तरफ लिखिए इसहाक और एक तरफ लिखिए इस्माइल। बात वाज़ है? इस्माइल अलैहिस्सलाम बचपन में ही जुदा कर दिए गए कनान से। हजरत याकूब जो थे, ये कनान में आबाद थे। कनान क्या है? सीरिया का एक शहर है, शाम का। पीछे रह गए हजरत इसहाक। इसहाक के बेटे थे याकूब। बात समझ गए? फिर दोहराती हूँ, याकूब अलैहिस्सलाम कौन थे? इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पोते, और ये हजरत सारा के वतन से पैदा हुए थे, जबकि इस्माइल अलैहिस्सलाम बीबी हाजरा के वतन से पैदा हुए थे। इनको याकूब क्यों कहते हैं? जरा सा गौर कीजिए इस लफ्ज को। रूट क्या होगा लफ्ज याकूब का? ऐन काफ बा। इनके बारे में बनी इसराइली रिवायत से एक बात मिलती है, याकूब जो थे ये जड़वां पैदा हुए थे। इनका एक और भाई था ईसू, और यानी आप कह लीजिए कि हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के दो बेटे इकट्ठे पैदा हुए, एक का नाम याकूब रखा गया, एक का ईसू। जुड़वां जुके थे तो ईसू पहले पैदा हुए, और कहते हैं कि याकूब उनकी एड़ी पकड़े हुए आए। अब ये एक बनी इसराइली रिवायत है, नाम में लफ्ज अकब दिख रहा है, याकूब का लफ्ज अकब से है, और अकब कहते हैं पीछे आने वाला, यानी जुड़वां बच्चों में से बाद में आने वाला बाहर, वो है याकूब। वल्लाहु आलम, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बात मौजूद है कि ये सारा कुछ किया अल्लाह ताला ने। अब आप देखिए कि हजरत याकूब के नाम के साथ इतना कुछ क्यों है, कि हजरत याकूब की एक कॉमन थिंग आपको पूरे कुरान में बार बार मिलेगी, वो क्या है? बाप। लफ्ज लिखिए, बहुत बड़ी बात है, आपको ये लफ्ज बनी के तकाबुल में बताने वाली हूँ। पहले पारे के एंड पे हम क्या पढ़ेंगे? वइस हदर याकूब अल मौत। और जब हाजिर हुई याकूब अलैहिस्सलाम को मौत, तो उन्होंने अपने बेटों से क्या कहा था? मा ताबुदून मिन बादी, मेरे बाद क्या करोगे? यही अंदाज इनके लिए एक और जगह भी है। फिर उसके बाद अगर आप सूरह यूसुफ में जाते हैं, तो हजरत याकूब एक साबिर शाकिर बाप की सूरत में दिखते हैं। बच्चों की किस गलती पे रोकना है, टोकना है, अकड़ना है, जुलना है, करना है, उनको छोड़ना है, मैं तुम्हें आग करता हूँ ये कहना है या कुछ और कहना है, ये सारा कुछ आपको हजरत याकूब की शक्ल में दिखता है। यहाँ बात हुई है बनी याकूब। अब रब समझ आए, बाप का किरदार अदा किया था याकूब ने। जो शख्स अपने सगे बच्चों के साथ इतना ज्यादा लविंग और केयरिंग है कि बेटे को भी वो एक किस्म का कत्ल करके आ गए हैं, तो वो नहीं बोलता। तो बनी इसराइल को यहां या बनी इसराइल कहकर आर दिलाई जा रही है, देखो तुम किस बाप की औलाद हो। देखिए आज तो दर पर्दा आगे से आगे नस्लें चली हैं ना, लेकिन डायरेक्ट हजरत याकूब के दौर के करीब के जो बनी इसराइल थे उनके लिए इसमें कितनी बड़ी आर है। ये बिल्कुल ऐसी है कि किसी को उसके गलत काम पे टोका जाए, शर्म करो किसकी औलाद हो। हमारे कल्चर में तो वैसे ही आर देने के लिए बहुत कुछ है, माँ का दूध नहीं बख्शते और बाप की पगड़ी उछालते हैं, ये जुमले हैं ना। यहाँ असल में बाप की निस्बत से क्यों बुला, अब ये सवाल आप खुद लिख लीजिए अपने पास कि सवाल इसलिए लिख दिया क्योंकि उन्होंने अपने आप को हजरत याकूब के बाप के किरदार से फायदा नहीं उठाने दिया, तो या बनी इसराइल कहा। अच्छा अब यहां फिर नोट कीजिए, मैं भी लफ्ज पे ही रहती हूँ, या बनी इसराइल डायरेक्ट खिताब है। इसकी मुख्तलिफ मुमकिना सूरतें लिखिएगा। देखिए असल में तो ये आयतें किस पे नाजिल हो रही हैं, शाबाश बोलिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हो रही हैं। एग्जैक्टली, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला कह सकते थे ना, कुल ली बनी इसराइल, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाइए और बनी इसराइल को कह दें। ये ऐसी है जैसे खुद आप किसी को कुछ कहने के बजाय दूसरे के जरिए कहलवा दें, हो सकता था ना, क्योंकि कुरान अल्लाह के नबी पे उतरा। अल्लाह ताला उनको कहते जैसे कहा कुल हु अल्लाह अहद, तो कह देते कुल ली बनी इसराइल कह देते, चले ये भी ना कहते तो कुल बनी इसराइल कह देते, ये दोनों नहीं कहा। क्यों? लिखिएगा ये जुमला, बनी इसराइल को बराह रास्त खिताब करके अल्लाह सुबहाना ताला ने हमें एक सबक दिया। अहले किताब से बात करते हुए बराह रास्त बात करो, बी डायरेक्ट टू देम। सुलह हुदैबिया के बाद नबी सल्लम ने जब नॉन मुस्लिम हुक्मरानों को खत लिखे थे ना, तो उसमें भी तो यहूद और नसारा ही थे ना, तो आप डायरेक्ट लिखते थे उनको खत, ताल इला कलीमतन सवाम बैना नवा बैनकुम। क्या कहा था? इला शाह हब्श मेन मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो ये डायरेक्ट तबलीग की बात है। अफसोस की बात है मैं सच कहूँ कि आज हमारे इदारे, हमारी मस्जिदें गैर मुस्लिमों से यानी अहले किताब के लिए इतनी अननोन है, उनको इतना भी नहीं पता कि यहाँ कोई दीन सिखाता है या सीखता है। ज़्यादा से ज़्यादा उनको ये पता होता है कि हम उनकी पार्किंग्स में पार्किंग करते हैं गाड़ियों की, हमारी मस्जिदों के दरवाजे तक बंद है। ये मौका है इस बात को समझने का कि बनी इसराइल को तबलीग करने का सबसे खूबसूरत तरीका मुसलमानों को क्या होगा, बी डायरेक्ट विद देम। उनके घर जाइए, उनको बुलाइए, आप उनसे बात कीजिए, उन्हें कहिए ये हमारी जगह है, आइएगा बैठिएगा, चाय पी लें, खाना खा लें, कभी उनको चाय भेज दी, कभी उनको खाना भेज दिया, कभी उनसे कुछ, हम ज़्यादा से ज़्यादा खुश होते हैं ना दिल के साथ तो किसी मुसलमान को देखते हैं, आइएगा ऊपर नमाज की जगह है, आइएगा यहाँ खाना मिलता है, नहीं बी डायरेक्ट टू देम। खैर ये भी बात हो गई। इसके बाद आप देखिए कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जो थे ना, इनकी चार बीवियां थी, पहली तीन बीवियों से 10 बेटे पैदा हुए जिसका जिक्र हम पढ़ेंगे सूरत यूसुफ में। आखिरी बीवी से 2 बेटे पैदा हुए जिनको हम हजरत यूसुफ और बिन्यामीन कहते हैं। इन सब की कहानी वहां पे आएगी। चलिए अब ये सब कुछ तो बात हो गया, अल्लाह सुबहाना ताला ने यहाँ बनी इसराइल का जिक्र क्यों किया? क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मदीना शहर में आबाद थे बनी इसराइली। असल में इनका अपना मुल्क कनान था, बड़ी लंबी हिस्ट्री है, मैं उसको अब स्किप करूंगी, जरूरत भी नहीं है इतनी, बस आप इतना समझ लीजिए कि हालात के उतार चढ़ाव के साथ ये लोग कनान से मदीना में आ चुके थे। कनान ऐसे है उस दौर में, आप कह लीजिए मुल्क शाम जैसे उस वक्त का एक बहुत ज्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क था, और मदीना क्या है, जैसे आज आप में से कोई पाकिस्तान के गांव चीचू की मलिया में जाके रहने लग जाए नॉर्वे को छोड़कर। समझ नहीं आती क्यों, आपके बच्चे कहेंगे मामा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, अब्बू हमने क्या कसूर किया कि आप हमें नॉर्वे से निकाल कर फलां गांव में ले आए। समझ आए क्यों आए थे मदीना में? क्योंकि, अब ये बड़ा अहम जुमला है, क्योंकि इनको पता था इनकी किताबों की रोशनी में कि आखिरी नबी के आने का वक्त करीब है और वो मदीना में आएंगे। ताबा का लफ्ज़ है, तो लिहाजा ये वहां पे मौजूद है। मक्का में नबी सल्लम जब मौजूद थे तो आपका ब्राह रास्त यहूद से कोई भी इंटरेक्शन नहीं था, लेकिन इनडायरेक्टली यहूद ने मक्का वालों को भी बहुत सारे पैगामात भेजे थे, सर उनसे ये तो पूछिए वो तो पूछिए, जिसका जवाब आप सूरत कहफ और सूरह बनी इसराइल में पढ़ेंगे। ऐसे वहां बैठ के कहते जरा इनका इल्म तो चेक करें, भले इनको कितना को आता है, यानी वो आपको किस तरीके से आजमा रहे थे इस चीजों को अपने सामने रखिए। तो यहाँ अब अल्लाह ताला उनकी कहानियां हमें आपको सुना रहे हैं कि देखो अल्लाह ताला ने एक मौका दिया था, अल्लाह सुब्हान तआला हैड गिवन देम अ चांस बट दे डिडंट एक्सेप्ट दिस। बनी इसराइल बहुत खुशकिस्मत कौम थी क्योंकि अल्लाह सुब्हान तआला कह रहे हैं उस गुरु नेमती अल्लती अनमतु अलैकुम, याद करो मेरी वो नेमत जो मैंने तुम पर की। बनी इसराइल को कहा याद करो मेरी वो नेमत जो मैंने तुम पर की। सवाल पैदा होता है वो कौन सी नेमतें थी जो बनी इसराइल पर की गई। अल्लाह ताला ने उनके अंदर नबी भेजे जी,
उनको फजीलत दी, इल्म वगैरह की
इल्म
फजीलत
दिया, सलाहियतें दी, मेंटल लेवल उनका बहुत ऊंचा है, फिर मनोसलवा दिया, आगे हम सारा कुछ पढ़ेंगे। अब ये जो तकरीबन 10 रुकू बनते हैं ना, हम तकरीबन इनकी 2100 साल की हिस्ट्री पढ़ेंगे, जो इसमें इंशाल्लाह हमें कहानी की तरह ही पढ़नी है क्योंकि कुरान पाक में इनका तस्करा सबसे ज्यादा है। तो यहाँ देखिए जरा जुमले पे गौर कीजिएगा, नेमत ही आया है, वाहिद है, नेमते नहीं आया, नेमत। तो ये कौन सी नेमत है, लिखिएगा नेमत हिदायत। पीछे अल्लाह ताला ने इंसानों को कहा था या अय्युहन नास उबुदू रब्बकुम, बंदगी की दावत थी, अल्लाह ताला ने अपने आप को मालिक और इंसान को बंदा बनना सिखाया। यहाँ अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को जो हिदायत की नेमत दी थी उसकी तरफ इशारा है। यहाँ ना तो मनोसलवा का कोई अल्लाह ताला एहसास दिला रहे हैं, वो तो था हो गया खत्म। असल में यहाँ अल्लाह सुब्हान ताला ने इनको बता दिया कि तुम कितने खुशकिस्मत हो, ब्राह रास्त नबी भेजे। इनके ऊपर अल्लाह सुब्हान ताला की बहुत बड़ी नेमत क्या थी कि सबसे ज्यादा अंबिया कराम सिर्फ इस एक कौम में भेजे गए। आप सूरत अल अराफ से कुरान पाक का मिजाज इंशाल्लाह समझेंगे और उसमें आप देखेंगे कि मुख्तलिफ कौमों की तरफ एक नबी आया, जैसे कौम हूद की तरफ आद अलैहिस्सलाम आए, कौम समूद की तरफ सालेह अलैहिस्सलाम आए, एक ही आया ना, कौम लूत की तरफ हजरत लूत आए, मदियन वालों की तरफ मुख्तलिफ, बनी इसराइल की तरफ कितने आए होंगे, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं 4,000 नबी आए। ये है नेमत। फिर यहां नोट कीजिएगा किसी कौम पे किसी बस्ती में किसी शहर में किसी गिरोह पर अल्लाह का कोई बंदा नबियों का पैगाम देने के लिए आ जाए, ये उस कौम पर अल्लाह का इनाम होता है। पहले नबी आते थे, आज नबी कहाँ से आएंगे, आज नबी का पैगाम जाता है। आज भी दुनिया के बहुत सारे खित्ते जो है ना वो खाली हैं, उनको कुछ नहीं पता, लेकिन अल्लाह ताला ने हम मुसलमानों को इस लिहाज से खुशकिस्मत करार दिया कि हमारे पास बहुत कुछ है। तो यहाँ या बनी इसराइल कहकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के जो यहूद थे जो मदीना और उसके इर्द गिर्द में थे उनको पुकारा जा रहा है कि देखो तुम पर अल्लाह ने कितनी बड़ी नेमतें की हैं, और नेमतें भी वो की जो अनामतु अलैकुम। आप ये जरा थोड़ा सा अनामतु को देखें, क्या इसका मिलता जुलता लफ्ज कहीं पढ़ा आपने, अनम ता अलैहिम, वहां और इधर फर्क क्या है, ता तू, वहां क्या मानी था, तूने इनाम किया, यहाँ क्या हो गया, मैंने इनाम किया। तो आप पढ़ दें गलती से, अगर जल्दी में पढ़ना है क्योंकि बहुत दफा पढ़ना है सूरह फातिहा को, तो सिरात लजीन अनम तो अलैहिम गैरिल मकदूबी, क्या किया आपने, उनका रास्ता दिखा जिन पर मैंने इनाम किया। तो ये छोटे छोटे अराब यानी जबर जेर का जो फर्क है ना, ये मानी को बदल देता है। यहाँ ये चीज आपके सामने आ गई कि मैंने इनाम किया तुम पर, चलो ये भी बात हो गई। अल्लाह ताला क्या है सांझत ला रहे, नोट कीजिएगा जुमला, हमें तो कहा गया कि ला तमनुन तस्तकसिर, एहसान ना जतलाओ, ज्यादा लेने की खातिर किसी को कम ना दो। तो क्या अल्लाह सुबहाना ताला यहाँ बनी इसराइल को शर्मिंदा कर रहे हैं। और ये बात एक बहुत अहम बात है जिसको आज भी आप और मैं देखें कि हम इस बात को जरा सा समझें कि आखिर बनी इसराइल को अल्लाह ने हजारों साल पहले के अबाउजदाद के कामों पर हार क्यों दिलाई। हमें तो सूरह हुजरात में कह दिया कि किसी को शर्मिंदा ना करो, किसी की पुरानी गलतियों पे उनको ना टोको ना रोको। तो क्या मदीना के यहूद को उनके आबाओ अजदाद की बातों पे यहाँ शर्मिंदा किया जा रहा है? नेमतों का ताना दिया जा रहा है, सवाल समझ गए? और दूसरी बात है कि क्या आप किसी को उसकी माँ की या उसकी दादी की को गाली दे सकते हैं या उसका बुरा अमल कह सकते हैं? चलिए मैं इसको आसान करना चाहती हूँ। एक लड़की शादी होके ससुराल में जाती है, खानदानी की शादी है, चले फिर ही खतरा ज्यादा होता है। तो आप चंद दिन के बाद सास ताने देने शुरू हो जाए, तेरी तो माँ भी ऐसी थी, तुझे याद है तेरे बाप ने तेरी माँ के साथ क्या किया था, याद है? अब ये अंदाज को अच्छा होगा तो क्या नौजुबिल्ला इधर ऐसा तो नहीं लग रहा? क्योंकि देखिए ना, आज के बनी इसराइली जो नबी सल्लम के सामने बैठे हुए हैं, तो उनको इतने हजारों साल पीछे वालों के साथ क्यों जोड़ा गया? इसका जवाब लीजिए, क्योंकि ये सवाल लोग उठाते हैं जिनकी अब अकल बहुत चलने लग गई है ना। तो वो कहते हैं, देखो अल्लाह ने क्यों पुरानी बातें छेड़ी, गड़े मुर्दे क्यों खेड़े? तो इसका जवाब लिखिएगा, हर बंदा अपनी तारीख का रोशन पहलू याद रखता है। तारीख बातें कोई नहीं पसंद करता, यानी अगर आपकी उम्र इस वक्त 30 साल है ना, तो आपको कोई माजी की कोई बात याद दिलाए ना, तो आपको बड़ा मजा आएगा जब आपकी फुफ्फो आपको कोई आपकी बचपन की छेड़खानी कोई अच्छी बात याद दिला देंगी, और आप बड़ी भोली होती थी, आप ऐसी थी, आपको याद है वो आपने वो फ्रॉक पहना, आप उसमें कितनी अच्छी लगी, तो आप खुश होंगी ना। और अगर आपकी चची ताई को, तू बड़ी चालाक होती थी, तू बड़े ताने देती, तू फौरन शिकायतें लगाती थी, आपको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा ना। क्यों नहीं अपनों में बनती अक्सर हमारी? इस वजह से कि वो हमें पुरानी बातें याद दिलाते हैं। बनी इसराइल कैसे भी थे, अल्लाह ने उनको नबी भी दिए। बनी इसराइल क्या चाहते थे अपने तौर पे? कि अल्लाह तला कहते, या बनी इसराइल, ओ बनी इसराइल, देखो तुम कितने खुशकिस्मत हो, तुम्हारे पास इब्राहिम, इस्माइल और इसी तरह पूरी लड़ी कहते हजरत सुलेमान, दाऊद, कितने। वो तो ये चाह रहे थे ना, इंसान चाहता है कि उसकी अच्छी बात हो। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे हम मुसलमान हैं ना, तो हम जब हिस्ट्री की बात करते हैं तो किन का दौर लेते हैं? अबू बकर, उमर। कभी आपने उसके बाद जो खानदान गुलाम और मुगलिया दौर की जो खियानतें हुई या कुछ उसको सुना या सुनना चाहते हैं? कोई बंदा अपने माजी के गुनाहों को या वहां की कमियों को सुनना नहीं चाहता। हालांकि मुसलमानों की हिस्ट्री में बहुत जुल्म हुआ, ये इस्लाम का जो नाम बदनाम हुआ ये कोई ऐसे नहीं हुआ, इसके पीछे एक बहुत बड़ी हिस्ट्री थी। बिल्कुल इसी तरह बनी इसराइल क्या करते थे? अब यहाँ अल्लाह ने क्यों इनको ये याद रख, क्योंकि बनी इसराइल बड़के मारते थे, आपकी जुबान में मेरी जुबान में, कि बहुत फख्र करते थे, कहते थे वी आर चोजन पीपल, हम नबियों की नस्ल में से हैं। सूरत मायदा में आप पढ़ेंगे, नहनु अहिब्बाउहु, हम अल्लाह के लाडले हैं। कभी कर तो अब ना, यानी ये फख्रिया तौर पर कौम नबियों से ताल्लुक जोड़ते थे, हमने ये किया हमने वो किया। अल्लाह कहते, आओ मैं तुम्हें तुम्हारी हिस्ट्री के वो सफ़े दिखाऊं जिनको तुम स्किप करना चाहते हो, तुम अपने आप को पीछे कर दो। आज हम मुसलमान जितना मर्जी हजरत उमर के दौर की तारीफें करें ना, कोई आपको पूछे अगर आप उस दौर में होते तो आपने क्या कर लेना था? बल्कि शायद अब उमर का दौर इसीलिए अच्छा था कि आप नहीं थे, आप जैसे लोग होते तो उस दौर को भी खराब कर देते। तो आज हम मुसलमान भी बिल्कुल इसी तरह बैठे हुए हैं, वो काम नहीं करते जो करने होते हैं और सिर्फ अपने आप को लेते हैं पीछे इनडायरेक्टली। व मिन अन्नासी मन यकूल आमन्ना बिल्लाह कहकर, यहूद मदीना ही थे वहां भी, सच्ची बात है, क्योंकि निफाक का पौधा उन्हीं की सरकर्दगी में लगा था, वहां इशारा तनबाती, अब यहां बराह रास्त या बनी इसराइल कह दिया। अगला सवाल लिखिए, फिर आज के ज्यूस को तो हम इस पे कॉपी कर सकते हैं ना फटाफट। कोई भी आपको ज्यू कहीं मिला, आप कहते हैं या बनी इसराइल इधर आओ, उस्कुरु नेमती अल्लती अनमतु अलैकुम, तुमने ये किया वो किया, दिस एंड दैट, कर सकते हैं। क्योंकि जब मदीना के यहूद को अल्लाह के नबी के जरिए से सुनाया जा रहा है, तो हमें भी तो फिर पूरा हक हासिल है, क्योंकि हम नबी की उम्मती हैं। नहीं कर सकते, वजह नबी का किसी कौम में आना एक हुज्जत होता है, इतनी हद फासिल है। जैसे अगर हम यहां एक दीवार खींच देंगे ना, तो ये हॉल अब दो हिस्सों में बदल जाएगा, राइट? नबी का मदीना में आना यहूदे मदीना के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। जरा सा समझें फिर लिखें, यहूद के दो हिस्से कर लीजिए और नसारा के भी, सेम, दोनों के लिए सेम रूल है। यहूद और नसारा में से वो यहूद और नसारा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले दुनिया में आए, उनमें से बहुत सारे जन्नत में जाएंगे। ये बात समझ आई आपको? जिन्होंने अपने दीन के ऊपर अमल किया, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد یہود سارا وقت سجدوں میں رہیں، تورات کے ہر حکم پہ عمل کریں سوائے ایک حکم کے، اور وہ کیا جس کا ذکر آگے آ رہا ہے کہ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائیں تو جنت میں نہیں جائیں گے. بخاری اور مسلم کی روایت ہے، آپ کے اگر احسن البیان قرآن ہے تو اس کے اندر یہ حدیث کوٹ کی بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے سن لیا، جس یہودی اور نصرانی نے یہ سن لیا، یعنی بات پہنچ گئی، کیونکہ کفر کا تعلق بات کے پہنچنے سے ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ مجھ پر نہ ایمان لایا تو اس کا ٹھکانہ آگ ہے. تو کیا پتہ چلا کہ مدینہ کے یہود کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، بینہ تھے آپ، ایک رسول من اللہ ہی، اور سورہ بینہ کا آپ ترجمہ ہی پڑھ لیجئے تو اس میں آپ کو یہ مفہوم ملے گا. اس کے باوجود وہ نہیں مانے. آج کے یہود اور نصارہ کو ہم کیوں اس بات پہ لیں؟ پہلے تو خود سے پوچھیں، اپنے دامن میں جھانکیں، کیا ہم نے آج نبی کا پیغام اور یہ خوبصورت قرآن کلام ان تک پہنچا دیا؟ بات سمجھ گئے؟ دیکھیں پہلے دور میں لوگ تھوڑے تھوڑے تھے نا، دنیا میں ایسے چنکس تھے، تو ایک نبی آتا تھا تو رول ماڈل بن جاتا تھا، سب نے اس کو ماننا. آج دنیا اتنی بڑھ گئی، اگر آج کے دور میں نبوت ہوتی بھی، یعنی یہ بھی ایک سوال لکھ سکتے ہیں کہ اب نبوت اللہ نے کیوں ختم کر دی، چلتی رہتی تو چلو قیامت تک سلسلہ چلتا. تو دیکھیے بہت سارے لوگوں میں ایک شخص کا رول ماڈل ہونا کافی نہیں تھا، اس لیے اللہ نے امت کو کہا کن تم خیر امت اخرجت للناس، تم رول ماڈل بن کر اس دنیا میں پھرو تاکہ لوگ تمہیں چلتے پھرتے دیکھ کر دین کو سمجھیں. تو آج کے یہود اور نصارہ کو بلیم کرنے سے پہلے ہمیں اپنے دامن میں جھانکنا ہے. بات سمجھ گئے؟ کیا ہم نے پیغام پہنچا دیے پھر نہیں مانتے؟ اور بات ہے جو بھی کریں، میں کسی کا لیکچر سن رہی تھی تو انہوں نے اپنا ایک ایکسپیرینس شیئر کیا، وہ بھی مبلغ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں جہاز میں بیٹھا تو میرے ساتھ ایک کپل بیٹھا ہوا تھا، اور ان کی خاص ٹوپی ہوتی ہے کالے رنگ کی، اور یہود نے اپنا ڈریس کوڈ نہیں چھوڑا، ان کی عورتیں اور ان کی مرد بھی ایک خاص طور سے ہوتے ہیں. ہم بھی ٹریول کرتے ہیں نا تو ایئرپورٹس میں ہمیں فوراً پتہ چل جاتا ہے، اور بہت تھوڑے ہوتے ہیں یہ لوگ، کم ہے ان کی آبادی، آپ کو پتہ آٹے میں نمک ہے اس وقت دنیا میں، اتنے سے یہ لوگ ہیں. لیکن نعمتیں جو ملی اس میں ایک نعمت ان کا آرگنائزڈ ہونا، پچھلے سویل الجنہ میں میں نے لمبی لسٹ لکھائی ہوئی آپ لوگوں کو جو سننا چاہے، کیا کیا نعمتیں تھیں، آرگنائزڈ ہیں، ویل پلانڈ ہیں، ایک دو سال کی پلاننگ نہیں کرتے، سو سو سال کی پلاننگ کرتے ہیں، انجام سامنے دیکھ کر چلتے ہیں. اور یہ چیزیں آج بھی موجود ہیں. ابھی میں جرمن سے آئی ہوں، آپ کو پتا کہ جرمن میں اکثر یہود ہیں، اور ان کی آپ ذرا باتیں سنیں اور جو کہانیاں سنیں، دنیاوی اعتبار سے وہ بہت کامیاب ہیں. تو وہ کہنے لگے کہ میرے ساتھ ایک کپل بیٹھا، اور وہ جو سنا رہے تھے وہ کہنے لگے کہ میں لاس ویگاس جا رہا تھا، جن کو پتہ ہے لاس ویگاس اس کی خوبی کیا ہے دنیا کے حساب سے، جوا، گیملنگ، وہاں یہ کچھ بہت ہوتا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک کپل بیٹھا تھا، جو ہی جہاز اڑنا شروع ہوا نا تو میں نے دیکھا کہ وہ اپنی زبان میں کوئی دعائیں پڑھ رہے ہیں. تو میں نے کہا بہت دعا پڑھ رہے ہیں. خیر کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا جی تم کیا پڑھ رہے ہو، تو انہوں نے کہا کہ ہم گاڈ کو یاد کر رہے تھے نا. کہتے واہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لاس ویگاس کیا کرنے جا رہے ہیں؟ آف کورس گیملنگ. اب کہتے ہیں یہ بات مجھے ہضم ہی نہیں ہوئی کہ ابھی تو آپ دعائیں پڑھ رہے تھے اور ابھی آپ گیملنگ پہ آ گئے. تو پھر کہتے ہیں کہ میرے اندر خطبت تھی، میں نے کہا کہ What do you think? What Bible says about gambling? Is it not haram? تو کہتا ہے yes it's haram. تو کہا اچھا پھر تھوڑی دیر برداشت کیا. تو پھر میں نے پوچھا کہ اچھا جی آپ یہ بتائیں کہ ابھی تو آپ دعائیں پڑھ رہے تھے، گاڈ سے مدد مانگ رہے تھے، تو اب یہ گاڈ کا حکم توڑنے آپ اتنی دور جا رہے ہیں؟ اب ذرا جواب سنیے گا. کہیں گے yeah but گاڈ نے بھی تو ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا نا، کہ اس نے ہولوکاسٹ کی تھی تو ہم اس کی سزا میں ہم تھوڑی دیر گیمبلنگ ہم تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں گے کہ there is some God. واللہ ہی یہ جرت ہے کہ آج ہم مسلمانوں میں نہیں ہے. آیت کریمیں پڑھ لو، درود پڑھ لو، دعائیں پڑھ لو، تسبیح نمازیں پڑھ لو، تہجدیں پڑھ لو، تاک راتوں میں جاگ لو، سود نہیں چھوڑیں گے. واللہ ہی آج ہم بالکل، میں نے جب یہ واقعہ سنا کسی کی زبان سے میں حیران ہو گئی کہ جیسے وہ کوائن ہوتا ہے نا تو آپ اس کا ایک سکہ ادھر رکھو ادھر. انہوں نے کہا کہ آج کے جیوز کا حال کیا، وہ کہتے ہیں جب ہم نے کوئی گناہ کرنا ہوتا ہے نا تو ہم جسٹ اس وقت گاڈ کی وہ باتیں یاد کر لیتے ہیں جو ہمیں نہیں پسند. ہم کہتے ہیں جو گاڈ نے بھی کیا تو ہم بھی کرتے ہیں. جس طرح ہم کہتے ہیں ٹیٹ فورس نے بھی تو میرا دل دکھایا تھا میں بھی دکھاؤں، اتنی ضرورت تھی. اور یہ کام عام عقل والا بندہ نہیں کہہ سکتا، یہ بہت ایکسٹرا آرڈنری عقل مند لوگ ایسے جواز دیتے ہیں. اور آج مسلمانوں میں بھی ایسے عقل مندوں کی کمی نہیں ہے. وہ احکامات کے وقت کہتے ہیں اس نے بھی تو یہ کیا، اس نے بھی کیا، وہ بھی میں بھی پوچھوں گی. اور جہاں دعائیں اذکار اور رسمی دینداری ہے تو وہ آگے سے آگے ہوتے ہیں. इसी तरह से उन्होंने अपना एक्सपीरियंस एक और जगह सुनाया कि एक जगह कहीं क्रिश्चियनिटी की कोई तबलीग थी, वो वहाँ चले गए। कहते मैंने कहा मैं देखूँ बोला ये लोगों को क्या आजकल टीच कर रहे हैं ना, तो मैं सीखने के लिए, उनको क्या पता मैं कौन हूँ। खैर कहते जब मैं गया ना, 3 घंटे की उनकी वो एक वर्कशॉप टाइप थी जिसमें वो अपने लोगों को ट्रेन कर रहे थे। और उन्होंने क्या किया, कहते हैं कि जाके ना सब जब बैठ गए तो उन्होंने कहा देखो डोंट वरी अबाउट हेयर आफ्टर। ये सारी बातें आज के सबक में बतानी थी तो अभी बात बन गई तो मैं आपको यही सुना रही हूँ। उन्होंने कहा कि उस स्पीकर ने आते ही क्या कहा, लुक हेयर आफ्टर यानी जन्नत जहन्नम डोंट वरी, जीसस विल टेक केयर ऑफ दैट। तुम्हें आखिरत की कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए, कब्र जहन्नम पुल सरात सांप बिच्छू डोंट वरी, जीसस विल टेक केयर ऑफ दैट। लेट्स टॉक अबाउट दिस वर्ड, ओके डू यू हैव एनी प्रॉब्लम। उन्होंने कहा कि मैं हैरान कि जिस दीन से आप आखिरत को ही निकाल दें, और दीनदार जैसे ये मेंबर है और इधर आके कोई कहे कि आपको आखिरत की कोई फिक्र नहीं करनी, नबी सल्लम टेक केयर कर लेंगे, तो मुझे बताएं कि फिर नमाज रोज़ा हज ज़कात और सूद और ये वो चीज़ें आपके लिए कुमानी रखेंगी। फिर वो कहने लगे कि उसके बाद एक अच्छा काम भी उन्होंने किया। क्या किया उन 3 घंटों में, जो लोग थे उनसे कहा वी विल शेयर विद ईच अदर एवरी वंस प्रॉब्लम, तो आप में से किसी का कोई प्रॉब्लम है, वरीड है। मिसाल है कि इन्होंने हाथ खड़ा किया तो ये कहने लगी माई हस्बैंड लॉस्ट दी जॉब। अब वो कहने लगे कि वहाँ एक बंदा था उसने हाथ खड़ा किया, यस प्लीज आई लॉस्ट माई जॉब। कहते अच्छा ओके कम हेयर। सारे हालकों का कि चलो वी विल प्रे फॉर हिम, फ्रैंक है मिसाल उसका नाम, फ्रैंक ही बता रहे थे। तो कहने लगे कि उन्होंने सब ने मिलकर उसके लिए दुआएं की, ये अच्छी बात थी कम्युनिटी की बात की। फिर उसके बाद वो उनको समझाने लगे अच्छा ऐसे नहीं, ओके डज एनीबॉडी कैन हेल्प हिम, यानी सोशल हेल्प पे आ गया कि तुम में से कोई इसकी जॉब के लिए अरेंज करे, कर करा के थोड़ी देर इसके ऊपर बात की। फिर दूसरा आ गया, तीसरा आ गया बीमार, कहने लगे उसने पूरे सेशन में लोगों के सिर्फ दुनियावी मसले मसाइल हल किए। कौन ना खुश हो आपसे, आखिरत तो आप निकाल दें। आज यही मुसलमानों में है, वल्लाही दिलासे खुशखबरियां बशारतें सिफारशें, और अल्लाह के पकड़े को छुड़ाए मोहम्मद, मोहम्मद के पकड़े को कोई छुड़ा नहीं सकता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कर दे जो और जान दे जो अल्लाह कोई गाल नहीं होगा। यानी बिल्कुल इस वक्त मैं ये आयतें जब पढ़ रही थी, मैंने तकरीबन 7-8 घंटे ये 6 आयतों को पढ़ा कल से लेके आज तक, तकरीबन 8 घंटे कम अज़ कम मेरे लगे हैं कल से लेके अब तक, और अभी भी इसके अंदर से वो चीज़ नहीं है मैं आपको दे पा रही जो इसमें। क्यों अल्लाह ने यहाँ बनी इसराइल का तذکرہ किया, क्योंकि वी आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन। आप एक रास्ते से गुजर के आई हैं अभी, वहां सड़क टूटी हुई थी, वहां फ्लडिंग हुई हुई थी, वहां सड़क पे किसी ने कील फैलाए हुए थे, किसी तरह बचते बचाते अल्लाह के हुक्म और फजल से आप निकल आई, तो क्या आपका दिल नहीं करेगा इधर से आने लिए? हर गाड़ी को खड़ा करें, आपका तो दिल करेगा कि आप रोड के बीच में ऐसे आड़ी अपनी गाड़ी खड़ी कर दें, अल्लाह के बंदो रुक जाओ आगे बहुत खतरा है, मर जाओगे, खो जाओगे, ये होगा वो होगा, गाड़ियां डूब जाएंगी, ये होगा वो होगा। ये हाल है इधर, पिछली कौमों के हालात से अल्लाह मुझे और आपको सिखा रहा है। लेकिन मैं फिर दर्द के साथ कहूंगी कि हम मुसलमान नहीं संभल रहे, हम उन्हीं कदमों, हम उधर ही अपने बच्चे भेज रहे हैं जिधर वो जाते हैं, हम वही पहन रहे हैं जो वो पहनते हैं, वही खाते हैं जो वो खाते हैं। आपको तो यहूद आज तक अपना ड्रेस नहीं छोड़ते, उनका एक अपना खास ड्रेस कोड है, दाढ़ियां नहीं छोड़ते, इनकी दाढ़ी होती है। इस गए गुजरे दौर में भी आप कभी उनकी बुक्स पढ़े, मुझे किसी ने बताया कि उनकी एक बुक थी तो लिखी सारी वो दुआएं, वो सारी बातें कि वो समझिए किसी मुस्लिम का, लेकिन नीचे जो वो फुटर होता है ना तो उसमें किसी ज्यूज का ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा, तो हैरान हो गए। यानी टेक्स्ट में, दुआओं में और आयतों में आज हम मुसलमान भी अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही हैं, वो भी ऐसे ही हैं। यहूद का जवाल आया ही तब था कि जब उन्होंने दीन की अमल वाली चीजें छोड़ी और फजीलतों वाली चीजें ले ली। क्या आज हमारा हाल ये नहीं है? मर गया कुरान खानी करा लो, पैदा हो गया बिस्मिल्लाह करा लो, कुरान पूरा कर दिया तो उसकी आमीन कर दो, शादी की है तो उसके ऊपर एक खाना खिला दो। आज हम भी यही कुछ कर करा के बैठे हुए, आज जैसे एक कॉइन को चेंज करें ना, इस तरह मुसलमान भी अपनी हालतें बदल लेते हैं। तो अल्लाह सुबहान तआला उनकी बातें हमारे सामने लाकर क्या फरमाते हैं, या बनी इसराइल अस्कुरु नेमती अल्लती अलैकुम। और अस्कुरु क्यों आया है, यहां भी एक जुमला नोट करें, देखिए जिक्र कहते हैं भूली हुई चीज को याद दिलाना। इस दुनिया में जमीन पर एक ऐसा वक्त गुजरा है कि तौरात बिल्कुल नाबूद हो चुकी थी, एक्सटिंक्ट हो चुकी थी। अपने हाफजे से हजरत उजैर अलैहिस्सलाम ने लिखाई थी, तीसरे पारे में आप उनका जिक्र पढ़ेंगे, इसलिए फरमाया कि वो आयतें जो भूली हैं हाफजों से याद की हैं उसको आज पढ़ लो,